कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम पहला शमूएल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस अध्ययन से आप आत्मिक लाभ अवश्य प्राप्त कर रहे होंगे। परमेश्वर से प्राप्त की गई आशीषों को हमसे बांटिए और लगातार प्रार्थना में रहकर सुनते रहिए सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम बाइबल की पुस्तक से पहले शमूएल की पुस्तक उसके 15वें अध्याय का अध्ययन हम करने जा रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि योनातान ने पलिस्तियों पर दूसरी महान विजय प्राप्त की और निस्संदेह शाऊल के मन में उसके लिए जलन थी। उसके वश में होता तो वह उसे घात कर लेता। यद्यपि कि योनातान शाऊल का अपना पुत्र था, फिर भी शाऊल अब अपना वास्तविक चरित्र को प्रकट कर रहा है। मित्रों, आज हम पहले शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय में शाऊल अमालेकी आगाग के बारे में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना और शाऊल का उसे झिड़कना, इसके विषय में देखते हैं। आगाग के संबंध में शाऊल की अवज्ञा। इस अध्याय में परमेश्वर की आज्ञा के प्रति शाऊल की अनाज्ञाकारिता प्रकट की गई है। वह शाऊल से कहता है कि प्रजा के समक्ष वह उसका मान रखे। अब शाऊल के लिए अवसर शेष नहीं रहा है, अर्थात समय खत्म हो रहा है। वह राजा के पद से हटा दिया जाएगा। हम यहाँ शाऊल के लिए शमूएल का प्रेम भी देखते हैं। वह उसके लिए विलाप करता है। अमालेकियों और आगाग का सफाया करने की आज्ञा क्यों दी गई? इसका उत्तर एस्तेर की पुस्तक में हम पाते हैं। हमान, जिसने यहूदियों को लगभग मिटा ही डाला था, वह अमालेकी था। परमेश्वर इस जाति का सच्चा चरित्र जानता था, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय उसके 8 से 16 पद में हम पाते हैं। उन्होंने इसराइल पर आकरण ही द्वेषपूर्ण आक्रमण किया था। मेरे मित्रों, शाऊल के जीवन का अधिकाधिक अध्ययन करने से पता चलता है कि वह वास्तव में शैतान का जन था। मुझे पूरा विश्वास है कि उसे यही कहकर हमने उसके साथ अन्याय नहीं किया है। मेरा अपना विचार तो यह है कि उसने उद्धार पाया ही नहीं था, उसमें एक ढोंगी था। वह दिखाता था कि वह परमेश्वर का जन है, परंतु वह कभी था ही नहीं। उसने आगाग के संबंध में अपनी अनज्ञाकारिता और परमेश्वर से विरोध को ढांकना चाहा। आइए हम आज अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और देखें पहला शमूएल 15 अध्याय उसके 1-3 पद में लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इसराइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इसराइलियों से क्या किया, और जब इसराइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीवा, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। मेरे मित्रों, यदि आप अमालेकियों के इतिहास को नहीं जानते हैं तो आपको परमेश्वर का यह आदेश अत्यधिक कठोर सुनाई देगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 25 अध्याय उसके 17-19 पद में मूसा ने युवा पीढ़ी के लिए अमालेकियों के घृणित कार्य का वर्णन करके उन्हें शपथ दी थी, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया। अर्थात उनको परमेश्वर का भय ना था, इस कारण उसने जब तू मार्ग में थाका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सब पीछे थे उन सबों को मार डाला। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को न भूलना। मेरे मित्रों, यदि उन्हें जीवित छोड़ दिया जाता तो अति संभव था कि वे भविष्य में कल्पना से परे समस्या खड़ी करते, परंतु शाऊल ने उनका सर्वनाश नहीं किया और एस्तेर की पुस्तक में हम उनमें से एक हमान को देखेंगे। उसने संपूर्ण यहूदी जाति को ही मिटा डालने की योजना तैयार कर ली थी, और यदि परमेश्वर हस्तक्षेप न करता तो यह संभव था कि वह सफल हो ही गया था। परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने पर हम उसके कामों को समझ पाते हैं। स्पष्ट कहूं तो आप और मैं परमेश्वर नहीं हैं, और न ही परमेश्वर के निर्णयों का उत्तरदायित्व तो हमारा है। हम उसका न्याय करने वाले कौन होते हैं? हम पहला शमूएल 15 अध्याय उसके 4-6 पद में पढ़ते हैं, तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाईम में गिना, और वे 200,000 प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष भी थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बिठाया, और शाऊल ने केनियों से कहा कि वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इसराइलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी, और केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल ने लोगों को इकट्ठा किया और उनकी गणना की। उसने केनियों से कहा कि वे अमालेकियों के मध्य में से निकलकर चले जाएं, ऐसा ना हो कि वे नाश किए जाएं। केनी, यदि आपको स्मरण होगा तो मूसा के ससुर के वंशज थे। इनका उल्लेख न्यायों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 16 और 4 अध्याय उसके 11-17 पद में पाया जाता है। यह दया का काम था जो अन्य जाति उस युग में नहीं करते थे। हम पहला शमूएल 15 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के सामने है अमालेकियों को मारा। अब तक शाऊल आज्ञा पालक कर रहा है, अर्थात आज्ञा का पालन कर रहा है। आगे देखते हैं पहला शमूएल 15 अध्याय 8 और 9 पद में, और उनके राजा आगा को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से सत्यानाश कर डाला, परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, सर्वनाश करने में उससे लज्जा आई, अतः उसने आगाग को मारा नहीं। शाऊल को आगाग को न मारने का अधिकार नहीं था, न ही सबसे दीन किसान को। वह राष्ट्र पूर्ण रूप से दुष्ट था और राजा उनमें सबसे अधिक था। उनका विनाश और दंड उस समय अवश्य था। शाऊल को उनके उत्तम पशुओं को भी रख छोड़ने का अधिकार नहीं था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उन्हें लूटने के उद्देश्य से आक्रमण करवाया था। परमेश्वर ने इस काम को वर्जित किया था, परंतु उसने वही काम किया। इसराइल यहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दंड का साधन था कि अमालेकियों का सर्वनाश करे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। हम पहला शमूएल 15 अध्याय उसके 10 और 11 पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। मेरे मित्रों, शाऊल प्रजा का ही नहीं शमूएल का भी चुनाव था। शमूएल शाऊल से प्रेम करता था, वह चाहता था कि शाऊल एक अच्छा राजा बने। मेरे विचार में वह दाऊद की तुलना में शाऊल को अधिक सफल देखना चाहता था, परंतु अब क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को त्याग दिया, परमेश्वर का आज्ञाकारी शमूएल उसका आदेश सुनता है। शाऊल आज्ञाकारी नहीं था, अतः उसे अब दंड मिलेगा। हम आगे देखते हैं कि शमूएल शाऊल को झिड़कता है। पहला शमूएल 15 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, बिहान को जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल कार्मेल को आया है और अपने लिए एक निशानी खड़ी की है और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शाऊल ने कहा कि वह आज्ञाकारी ही रहा है, परंतु शमूएल की प्रतिक्रिया देखिए। पहला शमूएल 15 अध्याय 14 और 15 पद में शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह बम्बाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सबको हमने सत्यानाश कर दिया है। मेरे मित्रों, अपने व्यवहार को छिपाने के लिए शाऊल की बहानेबाजी और दोगली बातों को आप सुनिए। कुछ पशुओं को बचा रखने में उसके पास बड़ा धर्मप्रायण उत्तर था। वह अच्छे पशुओं को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना चाहता था। यह निसंदेह उसकी अनाज्ञाकारिता को ढकने का एक धर्मप्रायण बहाना था। आप आज भी ऐसा ही आडंबर देखते हैं। हम बड़ा दान देकर नाम कमाते हैं, भले काम करके अपने काले धंधे को छिपाने की कोशिश करते हैं। आज लोगों में ये बातें बहुत ज्यादा पाई जाती है। ऐसे अनेक अन्य सेवाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने कुकर्मों को ढांकते हैं। मित्रों, हम सब इसके दोषी हैं। मैं अपने एक मित्र के बारे में सोचता हूँ जो सेमिनार से निकलने के बाद सेवा में आया। तब उसके पास एक पुरानी कार थी, वह उससे संतुष्ट था। उसने विवाह नहीं किया हुआ था, वह उसमें घूमता फिरता था। कलीसिया के लोग उसे देखकर लज्जा महसूस करते थे और सोचते थे कि यह क्या हास्यपूर्ण काम है। तब परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया कि मुझे एक नई कार चाहिए, मैं सेवा में अधिक प्रभावी हो जाऊंगा। और सच कहें कि उसने एक महिला से भेंट के रूप में एक कार प्राप्त की, और वास्तव में ये सेवा का एक बहाना था। और उस महिला से उसने नई कार पाकर वह बहुत ही प्रभावित करना चाहता था। मेरे मित्रों, ऐसा ही कई ऐसे विश्वासी हैं जो इस प्रकार के कार्यों को करते हैं। और पकड़े जाने पर शाऊल ने भी अपने सैनिकों पर दोष डाल दिया। प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। वह राजा था और वही इसका उत्तरदायी भी था। हम पहला शमूएल 15 अध्याय उसके 20 और 21 पद में पढ़ते हैं, शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों को सत्यानाश किया है, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। मेरे प्रियो, शाऊल कहता है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी है। यहां ध्यान दीजिए कि वह मेरे परमेश्वर या हमारे परमेश्वर कह रहा है, वरन तेरे परमेश्वर यहोवा वह कह रहा है। वह पशुओं को जीवित बचा लाने का दोष अपने ऊपर नहीं ले रहा है। दोषी तो वास्तव में वही था, क्योंकि वह राजा था और सारी जिम्मेवारी उसी की थी कि वह प्रजा को किस रीति से रखे। हम पहला शमूएल 15 अध्याय उसके 22 और 23 पद में आगे पढ़ते हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मारना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि यह धर्मशास्त्र का एक अति उत्तम अंश है। परमेश्वर की आज्ञा न मानना और परमेश्वर से विद्रोह करने के कारण परमेश्वर द्वारा शाऊल का राजपद से त्याग है। यह हम सबके लिए जो परमेश्वर की संतान होने का दावा करते हैं एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बाइबल अंश है। यदि हम दावा करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं और उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, उसके वचनों का पालन नहीं करते हैं, तो निस्संदेह या आप जान ले कि आप भी उस राजपद से त्याग किए हुए व्यक्ति हैं। मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसी अनौपचारिकता एवं मित्रतापूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। एक गीत है कि यीशु कैसा दोस्त प्यारा। हमें यीशु के प्रति ऐसा व्यवहार रखने में सावधान रहना है। आप कहते हैं कि यीशु आपका मित्र है, तो आपके कहने का अर्थ क्या है? आप वास्तव में उसे अपने स्तर तक गिरा रहे हैं। यदि आप कहें कि राष्ट्रपति आपका मित्र है, तो आप उसे अपने बराबर बनाते हैं। परंतु यदि राष्ट्रपति कहे कि मैं उसका मित्र हूं, तो मेरा मान बढ़ता है। यीशु का अपना मित्र कहने में हम धर्मशास्त्र के अनुकूल नहीं चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 14 पद में प्रभु ने कहा, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। क्या आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? यदि हम उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, तो उसे मित्र कहने का साहस हम और आप कैसे कर सकते हैं? मित्रों, उसकी आज्ञा न मानना भूत सिद्धि से भी अधिक बुरा है। यह परमेश्वर से विद्रोह करना है। जब आप ऐसे व्यक्ति से भेंट करते हैं जो पूर्ण रूपेण परमेश्वर का अनाज्ञाकारी है, तो आपका निष्कर्ष यही होगा कि वह प्रभु का जन है ही नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कर्मों से उद्धार है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि आप परमेश्वर की संतान हैं और आप उस स्थान पर आ गए हैं कि आप उसे जानते हैं, तो आप निश्चय ही उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, अर्थात आज्ञा मानेंगे। उसने यह भी कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे विचार में यदि आप प्रभु से कहें मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, तो वह कहेगा मेरी आज्ञाओं को भूल जा। मित्रों, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम प्रभु के साथ अच्छे संबंधों में रहें। परमेश्वर की संतान होने के लिए उससे व्यक्तिगत रूप से जानना है। यही एक महत्वपूर्ण मसीही विश्वास को संसार के अन्य धर्मों से या भिन्न बातों से अलग करती है। आप संस्थापक हो जाने या बिना किसी भी पंथ के अनुयायी हो सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह को जाने बिना आप विश्वासी नहीं हो सकते। मेरे मित्रों, फिर से ध्यान दीजिए कि आप किसी भी संस्थापक को जाने बिना उसके अनुयायी बन सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह को जाने बिना आप विश्वासी नहीं बन सकते हैं। उसे जानना अनंत जीवन है। हम पहला शमूएल 15 अध्याय उसके 24 पद में आगे पढ़ते हैं, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपने प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। मित्रों, आप ध्यान दीजिए, उसकी घटिया प्रेरणा को आप देखिए। उसने कहा कि वह प्रजा से डर कर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने पर बाध्य हुआ था। वह सबको प्रसन्न करना चाहता था। शाऊल जैसे अनेक लोग हैं, अनेक प्रचारक मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनकी ही जुबानी वे बोलते हैं। मैंने हाल ही में एक प्रसिद्ध प्रचारक के बारे में सुना कि वह समझौते करने लगा है क्योंकि वह सबके साथ अच्छे संबंध में रहना चाहता है। शाऊल का स्वभाव भी ऐसा ही था। उसने अपना अपराध स्वीकार किया परंतु उसका पश्चाताप सच्चा नहीं था। मेरे मित्रों, आज बहुत से कलीसियाओं में पासवान कलीसिया को प्रसन्न करना चाहते हैं। उन्हीं के मुताबिक वे वचन को बांटते हैं और सच्चे वचन से वे अपने कलीसिया के लोगों को वंचित रखते हैं। ये कितनी दुख की बात है कि आज हम इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। पहला शमूएल 15 अध्याय 25 से 29 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इसराइल के राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागी की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इसराइल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है, और जो इसराइल का बलमूल है वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया था और अब वह उसके पाप के कारण उससे राज्य छीन लेगा। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने अपना विचार बदल लिया है, परंतु सच तो यह है कि परमेश्वर ने अपना विचार नहीं बदला है। शाऊल बदल गया है और उसने पाप किया, अतः परमेश्वर उचित न्याय करेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर मुझे और आपको भी ऐसे अवसर देता है ताकि हम परमेश्वर की ओर फिर जाएं। परंतु यदि हम बार बार पाप करते रहें तो निश्चय जाने कि परमेश्वर इसका उचित न्याय करेगा। मेरे जवान भाई बहन, मेरे माता पिता, आप कोई क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो निश्चय जाने कि इसका परमेश्वर उचित न्याय करेगा। हम पहला शमूएल 15 अध्याय उसके 30 पद में पढ़ते हैं, उसने कहा, मैंने पाप तो किया है तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इसराइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। मित्रों, मुझे विश्वास नहीं कि शाऊल का पश्चाताप सच्चा था। देखिए, वह अपना पाप कैसे छिपा रहा है। उसने शाऊल से कहा, मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं, जिससे कि इसराइल को परमेश्वर द्वारा उसे त्यागने का पता न चले। वह पश्चाताप तो करना चाहता था, परंतु अपनी अनाज्ञाकारिता का दंड चुकाना नहीं चाहता था। वह पूर्ण रूप से ढोंगी मनुष्य था। वह शमूएल के साथ अपने आप को छुपाना चाहता था। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं, पहला शमूएल 15 अध्याय उसके 32 और 33 पद में लिखा है, तब शमूएल ने कहा, अमालेकियों के राजा आगाग को मेरे पास ले आओ। तब आगाग आनंद के साथ यह कहता हुआ उसके पास गया कि निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। शमूएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वंश हुई, वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वंश होगी। तब शमूएल ने आगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। आगाग आनंद के साथ शमूएल के पास आया क्योंकि वह जानता था कि उसकी जान संकट में है। शमूएल ने आगाग को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आपके लिए यह एक अत्यधिक कठोर बात हो सकती है, परंतु मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है और वह अनुचित और बुराई का दंड देता है। मैं अति प्रसन्न हूं कि परमेश्वर न्याय करेगा। मैं आपके विचार तो नहीं जानता, परंतु मैं परमेश्वर को धन्य कहता हूं कि कोई भी बुराई करके नहीं बचेगा। कुछ लोग ऊंचे ऊंचे पदों में होते हैं और सोचते हैं कि वे पाप, बेईमानी, हत्या, व्यभिचार, घूसखोरी, कुकर्म करके बच जाएंगे। जी नहीं, परमेश्वर निश्चय ही उनका न्याय करेगा। पाप करके कोई नहीं बच सकता। आज हमें यह सत्य स्पष्ट कर देना है। अतः शमूएल ने इस निस्सार दुष्ट राजा को परमेश्वर का दंड दिया। मेरे मित्र, आज आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आज मुझे और आपको भी इससे नहीं बचा सकता है। मुझे और आपको भी इस दंड का सामना करना पड़ेगा यदि हम इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। पहला शमूएल 15 अध्याय 34 और 35 पद में लिखा है, तब शमूएल रामा को चला गया और शाऊल अपने नगर गीबा को अपने घर गया, और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इसराइल का राजा बनाकर पछताता था। मित्रों, जब हम बाइबल में यह लिखा हुआ पाते हैं कि परमेश्वर पछताया या पछताता था, तो इसका अर्थ है कि प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने विचार बदला। जी नहीं, उसने अपना विचार नहीं बदला। उसने सदैव यही कहा था कि यदि शाऊल सफल नहीं हुआ तो वह उसे राजा के पद से हटा देगा। शाऊल ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसे राजा के पद से हटा दिया। परमेश्वर आज भी पाप से घृणा करता है और पाप का दंड देता है। शाऊल प्रजा की पसंद था और वह विफल हुआ, तथापि शमूएल ने उसके लिए विलाप किया। मेरे विचार में शमूएल शाऊल से दाऊद की तुलना में बहुत अधिक प्रेम करता था। वह उसका पतन और पथ भ्रष्ट होना देख नहीं पाया, और यही कारण था कि शाऊल से कहे गए उसके शब्द अत्यधिक कठोर एवं कड़वे थे, क्योंकि वे एक प्रेमी हृदय से निकले थे। शमूएल के शब्द परमेश्वर के मन से उत्पन्न हुए थे। मेरे मित्रों, परमेश्वर का प्रेम उसे पापियों के न्याय से ढलने नहीं देता। वह उन्हें प्रेम करते हुए भी दंड दे सकता है। हमारा परमेश्वर पवित्र, धर्मी और न्यायी है, और साथ ही साथ वह प्रेमी है। वह किसी भी रीति से पाप को सजा दिए बिना नहीं छोड़ता, क्योंकि वचन में लिखा है कि वह पापियों से प्रेम करता है। जी हाँ, और यह सच है कि वह पाप से नफरत करता है। मेरे प्रिय मित्र, आज यदि आप पाप में अपना जीवन जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आइए, सच्चे मन से पश्चाताप कीजिए, और निश्चय जानिए कि परमेश्वर आपके सारे पापों को क्षमा कर आपको एक नया जीवन देंगे, आपके जीवन में शांति और आनंद प्रदान करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप न्याय से बचें और उस उद्धार के आनंद को प्राप्त करें जिसे आपको सिर्फ विश्वास के द्वारा अनुग्रह से प्राप्त होता है? मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है, और एक सही निर्णय अपने जीवन में आप अवश्य लेंगे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।